धूप में कभी छाओ बन कर लहरों में कभी नाव बन कर धूप में कभी छाओ बन कर लहरों में कभी नाव बन कर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ 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 मेरे बाबा है साथ
ओम शांति ओम शांति। हमारे बीच में बाप दादा की अमूल्य रतन ब्राह्मणों के दिलों को जीतने वाली राजयोगी बीके डबल डॉक्टर सविता दीदी जी उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी जी आपका इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आपने ईश्वरी ज्ञान को राजस्थान कोटा से प्राप्त किया है जिसको 51 इयर्स हुए हैं। 38 इयर्स से आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई है। शुरू में आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर के नाते आपने 10 साल तक ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। आपका ये परम सौभाग्य रहा है कि परम सद्धे हम सबकी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी के स्वास्थ्य को 2000 से 2007 तक उनके अंग संग्रह करके उनके स्वास्थ्य की टोटल देखभाल किया है और उनके साथ के अनुभव भी आपके पास बहुत सुंदर प्राप्त हैं। ताली बजाएंगे इस बात के लिए। साथ में विशेष रूप में आप सीनियर राजयोग का प्रशिक्षिका है। आप बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। महिला विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वर्तमान समय मानसरोवर एकेडमी जो है उसके आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। दीदी जी के अंदर बाबा ने हॉबी दी है, वाणी बड़ी मधुर है, स्वभाव में भी आपकी सरलता है और इतना बिजी रहते हुए भी सरल रूप से आप सभी को मिलकर के अपनापन अनुभव कराती हैं और साथ में आप कई प्रकार के आबू में नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम जो होते हैं उसको भी आप घोषित करती हैं। तो ऐसे बाबा की अमूल्य रतन हमारे बीच में उपस्थित है। आज का आपका विषय है निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगी आदरणीय राजयोगिनी डबल डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को तो मधुबन में भर्ती करने की लॉटरी मिली है। बहुत लोग तो नंबर लगाते रहते हैं, यहाँ तो बाबा ने खुद ही नंबर लगा दिया। कौन कौन है जो पहली बार पांडव भवन में आके रहे, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये बाबा की तपोभूमि है, स्वयं ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते रहे। हर दिन बाबा आकर मुरली चलाते थे, हमारी मम्मा, फिर हमारी दादियां, सब ने यहाँ तपस्या की, सबकी कर्म भूमि रही है। तो उसके पावरफुल वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं। तो हमें योग करना नहीं पड़ता, यहाँ पर योग लगता है। मेहनत करनी पड़ रही है। तो जैसे विषय है आज का निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत। तो हम सभी को बाबा में निश्चय है, तभी तो हम ज्ञान में चल रहे हैं। तो निश्चय बाबा में है, लेकिन फिर भी 100% निश्चय है ऐसा जरूरी नहीं है। निश्चय में भी नंबर वार है, परसेंटेज में निश्चय हो सकता है। बाबा की कोई बातों में निश्चय है, कोई बातों में निश्चय नहीं है। यानी बाबा में निश्चय माना पढ़ाई में भी निश्चय, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसमें भी फुल निश्चय। फिर आज भी मुरली में बाबा ने कहा बाबा की डायरेक्शंस पर चलना। निश्चय है तो हम पूरा डायरेक्शंस पर चलेंगे, अगर 100% निश्चय है तो, है ना। तो मानो हमें निश्चय तो है, लेकिन जो धारणाएं हैं हमारी, खान पान की धारणा है, पवित्रता की धारणा है ना। और भी बाबा ने जैसे आज कहा खाना खाते समय भी बाबा को याद करना है। शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में बाबा की याद में भोजन करना है। तो वो कभी कैसे, कभी कैसे, कई उसमें थोड़े कच्चे भी होते हैं। फिर जैसे रोज अमृत वेले का नियम है, मुरली का नियम है हमारा, है ना। तो ये सारे जो बाबा के डायरेक्शंस हैं उनमें भी उतना ही निश्चय है, तब हम कहेंगे 100% हमारा निश्चय है। और बाबा में निश्चय माना भगवान को पा लिया, माना सब कुछ पा लिया। तो कहते हैं ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा ना, जो बाबा की याद में एक्यूरेट रहते हैं वो कैसे होंगे, आज की मुरली, उनका चेहरा खुशनुमा होगा, उसका चेहरा चमकता रहेगा, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तो वो है बाबा में निश्चय। फिर साथ में बाबा कहता है कि विजय हमारी तब होती है, निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं ना, तो निश्चय के साथ विजय जुड़ी हुई है। तो विजय हमारी तब होती है जब केवल बाबा में निश्चय नहीं, लेकिन बाबा के साथ साथ स्वयं में भी हमारा निश्चय हो। साथ साथ ड्रामा में भी निश्चय हो और परिवार जो बाबा ने ये दिया है इस परिवार में भी हमारा निश्चय हो। तो उसको कहते हैं चारों पाए बराबर होने चाहिए, तो फिर कोई चीज हिलती नहीं है। उसके चारों तरफ मजबूत है तो वो अचल होती है, और अगर एक भी पाया कमजोर होगा तो हिलती डुलती रहेगी। तो ऐसे ही ये चारों निश्चय हमारे मजबूत हैं तो कभी भी हमारी हार हो नहीं सकती, सदा ही हम विजयी हैं, यानी निश्चित विजयी हैं, विजय निश्चित है। और हम निश्चिंत भी रहेंगे क्योंकि पता है कि विजय निश्चित है। तो स्वयं में निश्चय, स्वयं में निश्चय, जो बाबा ने मुझे स्वयं की नॉलेज दी, स्वयं का सत्य ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूं। और फिर सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं, वो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई। आज भी बाबा ने कहा, कभी सपने में भी सोचा था कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे? सोचा था? हाँ, तो बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दे दिया कि हम ही वो देवी देवता थे और हम ही पूज्य थे, हम ही महान आत्माएं हैं, हम ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यवान कोटों में कोई है। और बाबा ने क्या स्मृति दिलाई? मास्टर विश बीज रूप है, आज की मुरली में था। और भी कहा नूरे नूरे रतन हो, बाबा के नूरे रतन है, और डबल स्पिरिचुअल लाइट हाउस। कितनी बड़ी बात है कि सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस हैं। और एक ही मुरली में, आज की मुरली में कितनी बाबा ने नशे की बातें हमें याद दिलाई। तो जो निश्चय बुद्धि होगा उसको नशा भी जरूर होगा। तो स्वयं में निश्चय माना, जो भी बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं, स्वमान दिए हैं ना बाबा ने हमें, तो जितना हम उस स्वमान की स्मृति में रहते हैं, एक होता है सुनकर खुश होते हैं, हाँ बाबा कहता है, अच्छी अच्छी बातें कहता है, हो गया पूरा, मुरली सुनी काम पूरा हुआ। फिर सारा दिन अपने में ही रहते हैं, माना अपने काम धंधे में जो भी है, भूल भाल जाते हैं बाबा क्या कहता है। लेकिन जो अटेंशन रखते हैं और स्मृति में रहते हैं कि बाबा ने हमें क्या सम्मान दिया, बाबा ने मुझे क्या टाइटल दिया, उसकी स्थिति कैसी होगी? खुशी वाली, नशे वाली, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो वो नशा दिखाई देगा उनके द्वारा, है ना। तो वो निश्चय हमारा कितना है। फिर बाबा कहता है उसका मतलब ये नहीं अभिमान में आ गए, अरे मैं, हम तो इतने ऊंचे हैं तो दूसरे को कैसी नजर से देखने लगेंगे, ये तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं, ऐसे होंगे क्या? उसको अभिमान कहते हैं। तो जितना नशा उतना निर्माण, ये बैलेंस निश्चय बुद्धि वालों को होगा, मैपन में नहीं आएंगे वो। और उसकी निशानी होती है कि अगर उसको जरा कोई एक शब्द कह देगा तो फीलिंग में आ जाएंगे। अभिमान की निशानी अपमान होती है, वो जरा भी अपमान सहन नहीं कर सकता, एक मिनट में फीलिंग में आ जाएंगे। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये रूहानी नशा है या उल्टा नशा है। रूहानी नशा स्वमान का नशा, तो वो निमित्त होंगे, सदा अपने को निमित्त समझेंगे और नव निर्माण करने वाले होंगे, कल्याणकारी होंगे। बाबा कहते हैं उनकी भाषा ही उदारता की भाषा होगी, उदारता माना देने वाले, दाता होंगे, हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। कई बार होता है ना सेवा में या नाम मान शान में, तो जैसे बाबा ने सदा पहले आप कहा, बच्चों के लिए बाबा क्या कहते थे, बच्चे मेरे से भी होशियार हैं सेवा करने में, मम्मा मेरे से भी भाषण अच्छा करती हैं। बाबा कैसे महिमा करते थे, ऐसे नहीं कोई बाबा कम थे, लेकिन बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा। ये निर्माणता की भाषा है, उदारता की भाषा, माना खुद को आगे रहने की इच्छा नहीं लेकिन दूसरों को हम देते हैं तो उतना ही हमें वो प्राप्ति होती है। तो ये है स्वमान में रह करके निश्चय से, स्वयं में निश्चय से विजय प्राप्त करना, नहीं तो दिल शिकस्त होंगे। अगर ये नहीं समझेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो फिर पता नहीं, बाबा तो कहता है मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ना मेरा तो शरीर ही ऐसा है, मैं क्या करूं, ये भाषा किसकी है? स्व में निश्चय वाले की है। स्व में निश्चय वाला कभी अपने को कमजोर समझेगा तो कभी भी उसको स्वयं में संशय नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, संग दोष में संशय में आ जाते हैं। अब आप ज्ञान में चले बहुत निश्चय से, है ना, लेकिन आपके परिवार में सब तो ज्ञान में नहीं चलते, तो वो आपको कुछ ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुनेंगे इधर उधर से, तो दो चार बातें सुना देंगे, अरे तुम कहाँ फंस गए, कहाँ जाते हो तुम, हाँ ऐसी जगह जाते हो, दो चार ऐसी उल्टी बातें सुना देंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। किसी का घूमा कभी? हाँ, तो अगर हमको निश्चय है बाबा में और स्वयं में तो कोई क्या भी बोलता रहे, मैंने अनुभव कर लिया ना, जिसको कहते हैं ना आंख ना जाने दिल पहचाने, मूर्त या कुछ ऐसी, है ना, बाबा तो किसी को दिखाई नहीं देता है ना, पर किसने पहचाना, किसने पहचाना, मेरे दिल ने उसको पहचाना, मैंने अनुभव कर लिया। तो वो कहते हैं ना गूंगे का गुड़ खाता है लेकिन बता नहीं सकता है, तो हमने वो अनुभव किया तो फिर दुनिया वाले हमें क्या भी सुनाते रहे। और अगर नहीं अनुभव किया है तो किसी की दो बात ही मेरे को संशय में ले आएगी, अरे कहीं ये सही तो नहीं कह रहे, है ना। और कई लोग फिर इसके कारण क्या होता है, जैसे बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, आज नहीं संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि कितने भागंती हो गए, बाबा के यज्ञ में भी आए, साक्षात्कार भी किए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो यज्ञ छोड़कर चले गए, क्योंकि जो निश्चय बाबा में होना चाहिए था, जो स्वयं में निश्चय होना चाहिए था, वो उतना निश्चय नहीं। तो कोई भी पेपर आए तो वो पेपर के समय ऐसे ही ड्रामा में निश्चय। अब ड्रामा में जो निश्चय है, ड्रामा में निश्चय हमें अचल अटल अडोल बनाता है, क्योंकि ड्रामा में दोनों ही तरह के सीन आते हैं। ड्रामा में हमारे सामने समस्याएं भी आती हैं, विघ्न भी आते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी कि हम बाबा के बन गए तो हमारे सामने कुछ आएगा ही नहीं, और ड्रामा हमें सफलता भी दिखाता है, है ना। तो जहां समस्या आती है ड्रामा में निश्चय माना, हम उसको समाधान में बदल सकते हैं तुरंत, एक सेकेंड में हम समाधान स्वरूप हो जाएंगे, वो शक्ति हमारे अंदर है। इसको बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह होंगे, यानी निश्चिंत होंगे, कोई भी बात को लेकर के मन में चिंता नहीं होगी, क्या होगा, क्यों हो गया, कैसे, यानी प्रश्नों में, ड्रामा मतलब फुल स्टॉप, ड्रामा मतलब कोई प्रश्न नहीं उठेगा, ये ऐसे कैसे, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, चले जाते ना समस्या में ही, प्रश्नों में चले जाते हैं, ये समस्या मेरे सामने क्यों आई, ये विघ्न मेरे को ही क्यों आता है, या जो भी, ये व्यक्ति मेरे लिए विघ्न रूप क्यों बनता है। तो उस समय ड्रामा कल्याणकारी है, किसी भी बात में हमारा कल्याण हो नहीं सकता, और नथिंग न्यू। बाबा कहता है ड्रामा में मैंने कल्प पहले भी इसे पास किया था, क्योंकि हूबहू रिपीट होता है ड्रामा, तो कल्प पहले भी मैंने इसे पास किया था, हम विजयी बने थे, अभी भी विजयी बनना ही है, और कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। तो ये ड्रामा का, नथिंग न्यू का फुल स्टॉप हम लगा सकते हैं, या जैसे कहा कि भले बुरा हो रहा है लेकिन बुरा होते हुए भी उसमें कल्याण है। कई बार कई लोग इसमें हिल जाते हैं। अगर हमें ड्रामा में निश्चय नहीं है या हम ड्रामा के ज्ञान को यूज नहीं करते टाइम पर, ऐसे ही मैं हम कईयों को जानते हैं, ऐसे एक भाई थे, ऑफिसर थे, वो अच्छी पोस्ट पर थे, आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, तो उन्होंने कोर्स किया, हमने ही उनको कोर्स कराया था, फिर वो बाबा के ज्ञान में भी चलने लगे और बहुत लगन लगी उनको, है ना। एक साल तक वो कोई बाबा का टर्न नहीं होता था जो वो बाबा मिलन करने नहीं आते, माना बाबा से मिलना ही है और सब मुरलियां सुनना पढ़ना कि जो अब तक बाबा ने सुनाया है मेरा कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो काफी लगन, और उन्होंने अपने गांव में मेरे गांव में भी सेंटर होना चाहिए, तो अपने गांव में सेंटर भी बना दिया 2 साल के अंदर अंदर कि गांव वालों का भी कल्याण हो। और उसके पहले वो बहुत पूजा पाठ करना माना भक्ति में भी थे, तो भक्ति में माना गांव में उन्होंने मंदिर भी बनाया था गांव वालों के लिए, और अब सेंटर बना दिया जब वो ज्ञान में आए तो। लेकिन हुआ क्या कि उनकी एक भावना थी कि मैं एक बहुत बड़ा स्थान बनाऊं बाबा का ऐसे, लेकिन जो उनके साथी ऑफिसर थे उन्होंने उनको कोई गलत उसमें फंसा दिया, माना आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तो लेन देन होती है क्योंकि लोगों के काम करते हैं, तो उनके ऊपर रिश्वत का आरोप लगा दिया, मतलब आ गया वो सही था गलत था ये तो वो ही जाने, पर उनके हिसाब से वो गलत आरोप लगा दिया उनके ऊपर और वो सस्पेंड कर दिए गए अपने जॉब से। अब जब तक कोर्ट में फैसला हो तब तक नौकरी पे वापस नहीं आ सकते हैं, तो इसमें एक तो व्यक्ति की बदनामी होती है ना कि इनको नौकरी से बिठा दिया और अच्छी इतनी पोस्ट उनकी जो वो गवर्नमेंट में उसमें सेक्रेटरिएट में काम करते थे। तो यहाँ पर लोगों ने जैसे कहा ना संग दोष, लोगों ने उनके दिमाग में उनके रिश्तेदारों ने देखो आप इतना भक्ति पूजा करते थे आपने अपनी देवता को की पूजा छोड़ दी ना, अब ये आपके ऊपर उनका उनका श्राप लगा है। और जिंदगी में इसके पहले उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ क्योंकि अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, तो संशय आएगा नहीं आएगा, संशय आने की मार्जिन है या नहीं, माना बुरा से बुरा क्या हो सकता है इंसान की जिंदगी में, ऐसी तो घटनाएं होती है ना। अब मानो ज्ञान में आने के बाद पति ने शरीर छोड़ दिया माना थोड़े समय में ही, या बेटे ने शरीर छोड़ दिया, मानो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं किसी के साथ जो थोड़ी असहनीय होती हैं, माना अनहोनी जैसी बातें हो जाएं, तो व्यक्ति को संशय आने की मार्जिन होगी नहीं होगी, तो फिर कल्याण होगा उसमें नहीं है, क्या कहेंगे, कल्याण ही है। हाँ, तो यहां पर संशय में आ जाते हैं कई, और ऐसा हुआ उनके साथ, वो सचमुच जो इतनी लगन से जो मैंने कहा कि भाग भाग कर आते थे मधुबन, हाँ फिर उनका छूट गया और फिर से उन्होंने अपना वो पूजा पाठ, क्योंकि लोगों ने डरा दिया ना उनको, तो फिर से वो पूजा पाठ भक्ति करना शुरू कर दिया। तो ये संशय हमको ले भी जाता है क्योंकि अभी उतना पक्का निश्चय, जैसे कहा ना 100% जो निश्चय होना चाहिए कि अब ये जो पेपर आया कोई ज्ञान में चलने की वजह से कहेंगे ऐसा नहीं, ये हमारे कोई पूर्व के कर्म है, अब आत्मा इतने जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब अपने साथ लाई है तो कोई कर्म कब सामने आ जाता है थोड़ी पता चलता है, लेकिन बाबा के साथ से बाबा की याद से वो हमें शक्ति मिलती है कि हम ऐसी परिस्थितियों को भी निर्विघ्न पार कर लें, है ना। वो अपनी अवस्था, क्योंकि मैं फिर एक और को भी जानती हूँ जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने समझा मुझे तो टाइम मिला है, नौकरी में है काम में है तो समय ही नहीं मिलता है जो पुरुषार्थ करना चाहो, अब बैठ गए तो जितना योग लगा लो, जितना ज्ञान योग का दीप में चले जाओ उसकी स्टडी कर लो, तो वो पूरा समय उन्होंने अपनी आप अवस्था को मजबूत बनाने में लगाया, तो और ही बाबा के ज्ञान में वो निखर के आगे बढ़े। तो दोनों में अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि संशय में आ गए और वो निश्चय में रहे। तो हमारे साथ भी ड्रामा में अगर हमारा पूरा निश्चय है तो हम कभी भी हिलेंगे नहीं। तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति क्या है? परिस्थिति के अनुसार स्थिति नहीं होती, लेकिन अपनी स्थिति से हम परिस्थिति को बदल लेते हैं। दुनिया वाले लोगों में स्थिति के अनुसार परिस्थिति होती है। दुख की बात होगी तो दुखी हो जाएंगे, खुशी की बात होगी तो खुश हो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। अभी अभी खुशी में नाच रहे हैं, थोड़े समय के बाद देखो तो बिस्तर पर उल्टे पड़े हुए हैं। होता है कि नहीं होता? अभी अभी खुश हैं, अभी अभी मूड ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि जैसी परिस्थिति आ रही है वैसी ही मन की स्थिति बन रही है। लेकिन हमारे को जो बाबा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की शक्ति से, बाबा की योग की शक्ति से, बाबा से हमें जो वरदान मिले हैं, उससे हम परिस्थिति को बदल लेते हैं। कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। ज्ञान के आधार पर परिस्थिति को बदल पाते हैं? नहीं बदल पाते। आप ज्ञान की पॉइंट यूज करो और नहीं यूज करो, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो पॉइंट को राइट समय पर यूज करना आना चाहिए। राइट समय यूज किया, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, मन की स्थिति निश्चिंत रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, बेफिक्र रहेगी। तो बाबा कहता है, आप बेफिक्र बादशाह बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से हो। बाबा ने जो हमें वर्षा दिया है, बाबा ने जो हमें वरदान दिए हैं, उसके आधार पर हैं। दुनिया में लोग ऐसे बेफिक्र नहीं हो सकते। और अगर हमें भी फिक्र आता है, इसका मतलब हम अभी उस निश्चय की परसेंटेज में हैं। तो सब समझते हैं हम बेफिक्र हैं। जो समझता है हम 100% बेफिक्र रहते हैं, कुछ भी हो जाए, दो चार हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब। तो ये अपनी चेकिंग और चेंज की जरूरत है। फिर परिवार में निश्चय, इसमें भी बहुत हिलते हैं। अभी बाबा ने संडे की मुरली में यही विषय पर मुरली चलाई ना, तो बाबा ने कितना अच्छे से समझाया कि बाबा ने हमें ये ईश्वरीय परिवार दिया है। इतना बड़ा परिवार दुनिया में किसी का भी नहीं है। हो सकता है किसी का इतना बड़ा परिवार? बाबा ने कहा वो धर्म पिताएं आते हैं ना, तो वो भी फॉलोवर्स बनाते हैं, परिवार नहीं बनाते हैं। और ये ईश्वरीय परिवार श्रेष्ठ परिवार है, क्योंकि हम सब पवित्र आत्माएं हैं। यानी सब जो है वो पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब नियम मर्यादाओं में चलने वाले न्यारा और प्यारा परिवार है। तो इतनी ऊंची नजर से हमें सबको देखना है, लेकिन हमारी नजर बदल जाती है जब हम परिवार में आते हैं। तो ऊंची नजर से देखने की बजाय कौन सी नजर से देखना शुरू कर देते हैं? जब संगठन होता है सेवा में, ज्यादातर सेवा में संगठन होता है, या कोई भी कारण से जब हम संबंध में आते हैं, तो फिर 95% से हम ठीक होते हैं। माना स्नेही सहयोगी वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन 5% तो कहीं ना कहीं हमारे से टकराते ही हैं, या हम उनसे टकराते हैं या वो हमसे टकराते हैं, क्योंकि हिसाब किताब भी है इतने जन्मों का। तो बाबा को कई बार कहते हैं, बाबा आप ठीक हो, आप अच्छे हो, आपसे योग लगाना अच्छा है, ये परिवार तो बेकार है। तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं कि राजधानी में आना है ना, तो बाबा शिव बाबा तो आएगा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी केवल लक्ष्मी नारायण और आप होंगे, ऐसा तो होना नहीं है। तो बाबा धर्म और राज्य दोनों स्थापन करते हैं, तो राजधानी में तो इन्हीं के साथ संबंध में आना है, क्योंकि यही आत्माएं सतयुग त्रेता में आने वाली हैं। तो अभी से ही हम संस्कार मिलाएंगे, यानी संस्कार मिलाना या मतलब उस आत्मा को समझ कर चलना। जिससे भी हम टकराते हैं वो हमारे समीप रहने वाली ही होती है। दूर के ढोल तो सुहावने होते हैं, दूर वाले तो अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि उनसे तो हमें कभी कभी मिलना है, कभी कभी बात करना है ना। तो टकराएंगे किससे, तो वो हमारे समीप वाले जो हैं, तो बाबा क्या कहता है, वो समीप वालों से समझकर वो जो हैं जैसे हैं, क्योंकि संस्कार हमारे एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हम उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों चलता है, हम जैसे चाहते हैं वैसे क्यों नहीं करता है या बोलता है या जो भी हम अपेक्षा रखते हैं उनसे, तो हो जाएगा वैसा। हमारे संस्कार एक जैसे तो नहीं होंगे ना, हम सब अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं हैं। तो मुझे उसके संस्कारों को समझकर कहीं अपने को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है स्व परिवर्तन से दूसरे का परिवर्तन हो जाए। दुनिया में हम समझाते ना, एक उंगली दूसरे की ओर, तो तीन उंगली किधर आ रही है, हमारी ओर, है ना। तो एक कमी सामने वाले में, तो पहले तीन कमी किस में है, तो पहले किसको बदलना है, मुझे बदलना है। पर हमारी कोशिश लगी रहती है ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये ठीक हो जाए तो सब सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते नहीं, पहले लक्ष्य रखना है, मुझे बदलना है। तो हम उनको स्वीकार करें। और फिर जैसे कहा कि सदा अगर हमारी दातापन की भावना है, अपेक्षा नहीं रखनी है, हम उनको सुख दें, हम उनको संतुष्ट करें, हम उनका कल्याण करें, माना शुभ भावना रखें, तो कोई नाराज होगा हमसे, कोई असंतुष्ट होगा, तो पहले मैं, इसमें पहले मैं, पहले मैं मतलब करने में पहले मैं और देने में पहले आप, पहले आप, तो फिर हम परिवार को संतुष्ट कर पाएंगे। तो जहां भी हम परिवार में हैं सदा, जैसे अभी हमारा वो चल रहा है ना अव्यक्त इशारा, मधुरता और नम्रता, तो जितना हम झुककर चलते हैं, प्रॉब्लम वहीं आती है जहां हम थोड़ा अपने आप रौब में आ जाते हैं, जैसे कहा मैंपन में आ जाते हैं ना, या दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं भी कोई कम थोड़ी हूं, ये मेरे को समझते क्या है, ये मेरे को पूछते ही नहीं है, तो ये सारा मैंपन आता है ना। तो नम्रता माना झुकना ही झुकाना है। आप किसी के आगे झुकेंगे तो क्या होगा, सामने वाला झुकेगा नहीं झुकेगा, कोई पैर छूने के लिए झुकता है तो सामने वाला क्या करता है, उसको उठाता है। तो यहां भी ऐसे है, तो ये अपने मन से झुकने की बात है। शरीर से तो बाबा हमें कोई पैर छूने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन मन से सदा अगर हम निर्माण हैं, नम्र हैं, तो कभी भी कोई भी आत्मा से हमारे संस्कार टकराएंगे नहीं। समय अनुसार मोल्ड हो जाना, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा व्यक्ति, तो बाबा कहता है मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है, वही सतयुग में आने के अधिकारी आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं ही सतयुग के पहले जन्म से आएंगी। और जो अपने को मोल्ड नहीं कर सकते, मैं तो इसके साथ रह ही नहीं सकती, इसको हटा दो या मुझे हटा दो, ऐसे भी होते हैं कोई ना। आज क्यों परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि इनके साथ हम रह नहीं सकते, इनके साथ हम एडजस्ट कर नहीं सकते। कई बार सेंटरों पे भी ऐसे होता है, अब दो बहनों के संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये स्थिति आ जाती है कि या तो ये या तो मैं। इसका मतलब हम मोल्ड नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन मोल्ड करना माना किसी के साथ भी मैं चल सकती हूँ। कोई पत्थर दिल भी हो, कितना भी कठोर हो, है ना बाबा कहता है, तो उसके साथ भी हम चल सकते हैं। और अगर हम ऐसे विजयी बनते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। ऐसी आत्माओं के साथ आप प्यार से चल के दिखा, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि सचमुच वो ऐसी आत्माओं के साथ रहते हैं तो दूसरे उनको समझते हैं कि अरे ये इनके साथ सेवा कर रहे हैं, माना ग्रेट है, इनके साथ तो कोई भी रह नहीं सकता। तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स हुई नहीं हुई, है ना, तो वो दुआओं के वो पात्र बनते हैं। तो ऐसे हमें परिवार में निश्चय रखना है, किसी भी आत्मा को हमें कमी देखना ही नहीं है। बाबा ने इसीलिए हमें गुणग्राही बनने का ही क्या दिया है, गुणग्राही बनने का ही विशेष गुण दिया है कि हर आत्मा में, और हर एक आत्मा अपने अवगुण छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है। बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा, अगर मैंने किसी में खराब देखा तो वो खराब कहाँ आने वाला है, वो मुझे ही असर करने वाला है। तो इसीलिए कभी भी किसी की कमी पर नजर नहीं जानी चाहिए। गुण पर नजर गई तो गुण ग्रहण करेंगे, और अवगुण पर नजर गई तो वो अवगुण मेरे अंदर आने लग जाएगा। और हम शुद्ध वैष्णव हैं, तो बाबा ने कहा जो वैष्णव होते हैं दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी, तो वो कभी भी कोई अशुद्ध चीज को टच नहीं करते हैं, और अगर टच भी करेंगे तो अपने आप को शुद्ध करेंगे वो फिर से। तो हम तो वैष्णव वंशी हैं, सच्चे सच्चे विष्णु वंशी हैं, तो किसी के भी अवगुण को टच करना माना हम उसकी अशुद्धि को टच कर रहे हैं, तो ये भी हमारी बुद्धि की शुद्धता नहीं है, बुद्धि की पवित्रता नहीं है। तो जहां हम इन धारणाओं में पक्के रहते हैं, वहां परिवार में संशय आने का प्रश्न ही नहीं होता है। और ये परिवार हमें बहुत प्यारा लगता है, और ये परिवार ही हमें अपना लगता है। लौकिक परिवार से तो हम क्या कहेंगे, आज बाबा ने क्या कहा योग के लिए, हाँ, मोह का जाल होता है ना, हाँ, मकड़ी का जाल, हाँ, तो उस जाल को तो हमें हप करना है, क्योंकि मोह की रगें तो लौकिक वालों में ही होती हैं, अलौकिक परिवार में मोह की रगें नहीं होती हैं। कभी कभी कोई लगाव चुकाव प्रभाव में आ जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो मोह की रगें हमारी खत्म करके अब हम इस अलौकिक परिवार के मेंबर हो गए। तो ये हमारा सच्चा परिवार है, तो ये परिवार में सदा ही हमारा रूहानी स्नेह एक दो के प्रति बना रहे, जो मधुरता की बात बाबा आजकल हमें कह रहे हैं कि सदा ही मधुर बोल हो, मधुर दृष्टि हो, एक दो के प्रति हमारी ऐसी ही भावना भी हो। फिर लेकिन जब तूफान आते हैं, तूफान आते ना, तो दुनिया में भी जब तूफान आते हैं तो क्या करते हैं, तूफान हिलाते हैं। जो भी पेड़ होते हैं ना, पुराने पुराने पेड़ भी होते हैं, उनको भी जड़ों से हिला देते हैं। कई पेड़ तो गिर जाते हैं और कई पेड़ हिल जाते हैं, माना फिर वो उतनी मजबूती से खड़े नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं यहां भी जब भी कोई तूफान आते हैं तो हमारे निश्चय को, निश्चय के फाउंडेशन को वो हिलाते हैं। उखड़ते नहीं है, उखड़ना माना चले जाना, जो बताया कि कहीं तो ज्ञान छोड़कर पुरानी दुनिया में भी चले जाते हैं, तो वो उखड़ गए, तूफान आए तो, और तभी होता है ऐसा, है ना। लेकिन अगर हमारा निश्चय हिला, माना हम अचल नहीं रहे, जो बताया कि हम हलचल में आ जाते हैं, चाहे जो भी निश्चय हमारा कमजोर हो रहा है, अगर हम हलचल में आते हैं तो फिर हमारी भविष्य प्रारब्ध पर उसका असर आता है। किसी भी तूफान को अगर हमने अचल, अडोल, एकरस स्थिति से पार किया तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारे रोज के आने वाले पेपर होते हैं ना, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब छोटे मोटे पेपर ना हो, लेकिन कभी कभी बड़े पेपर भी आ जाते हैं। तो रोज की बातों में तो अगर हम अपनी दिनचर्या में बिल्कुल एक्यूरेट हैं, रोज अमृत वेला हमारा पावरफुल है, रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज अपना कर्म योगी बनकर यानी ट्रस्टी भाव से हम अपना कर्म करते हैं, जो बाबा ने आज भी कहा ऑफिस में भी बैठे हैं तो भी क्या करना चाहिए, बीच बीच में बाबा को याद करना चाहिए ना। तो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो फिर ये छोटे मोटे पेपर तो हमें छोटे मोटे पेपर लगते ही नहीं कि पेपर आया और मैंने पास किया, फील भी नहीं होता कि कोई पेपर भी था, है ना। इतना सहज उड़ती कला का हमें अनुभव होता है, ऐसे लगता है जैसे बाबा के वरदानों से ही हम चल रहे हैं, बाबा चला रहा है, बाबा की पालना में हम पल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें ऊपर नीचे करते हैं, चार दिन आप मुरली मत सुनो, क्या होगा? पता चलेगा नहीं चलेगा? माया अपना काम करना शुरू कर देती है नहीं कर देती? कई सोचते हैं ठीक है ना, थर्सडे सुन लेते हैं मुरली, बाबा के घर थर्सडे तो चले जाते हैं, बाकी तो सुन लेते हैं आज बाबा ने क्या कहा। सम्मुख सुनना नंबर वन, सम्मुख सुनना नंबर वन, सेंटर पे जाके सम्मुख मुरली सुनते हैं उसकी जो पावर है, वो घर में मुरली सुनते हैं उसकी पावर है। आप में से कई सुनते होंगे ना, कौन है जो रोज सेंटर पे आके मुरली सुनते हैं? देखो 50-50 है। तो इसका मतलब जो रोज घर में सुनते हैं, मैं हाथ उठवाऊंगी तो नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि तो जो रोज घर में सुनते हैं वो समझ सकते हैं कि फर्क पड़ जाता है घर में सुनने से, क्योंकि हम आधा आधा सुनते हैं। आप टीवी पे मुरली सुन रहे हैं या मोबाइल पे मुरली सुन रहे हैं, उसी समय कोई आपसे बात करने आ गया, घर में है तो आप बात भी कर लेंगे उससे, मुरली भी चल रही है, अब उतनी मुरली तो गई। फिर रसोई में कुछ आपने रखा हुआ है, आपको याद आएगा, आप रसोई में भी चले जाएंगे, वो काम भी कर लेंगे, मुरली तो चल रही है। फिर किसी ने दरवाजे पे घंटी बजा दी, आप दरवाजा खोलने भी चले जाएंगे, उससे बात भी कर लेंगे, मुरली तो चल रही है। अब कितनी मुरली चली, कितनी मुरली सुनी। घर में हम ऐसे सुनते हैं, एकाग्रता नहीं होती मुरली सुनने में, इसलिए कुछ भी अंदर नहीं जाता। बाबा ने कहा है रोज मुरली सुनना है, इसलिए मुरली तो मैंने सुन ली। ऐसे हम मुरली अगर सुनते हैं तो वो कितना हम वो शक्ति अपने अंदर भर पाएंगे, और जो हमारे सामने पेपर आते हैं उसमें हम कितने विजयी बनेंगे वो हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो बाबा ने हमें कहा उसके अनुसार, जैसे कहा बाबा की डायरेक्शंस में भी हमको पूरा निश्चय चाहिए। क्यों बाबा ने कलयुग में हमें ये नियम दिए? क्योंकि अभी हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कलयुग की डायरेक्शन से हमारी नाव अपोजिट चल रही है, तो हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए। जब तक वो एक्स्ट्रा फोर्स हमारे अंदर नहीं होगा, हम कलयुग की इन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। क्यों दुनिया वाले इसे कठिन समझते हैं? क्योंकि उनको लगता है इस कलयुग की दुनिया में रह के ऐसे नियमों का पालन करना तो बहुत कठिन, क्या असंभव, असंभव लगता है उनको, है ना। वो 8 बजे सोकर उठते हैं और हम कितने बजे सोकर उठते हैं? तो क्यों हमारे अंदर ये पावर है और हमें तो लगता है कि अमृत वेला नहीं किया तो पता नहीं हमने क्या मिस कर दिया, है ना। तो हमारे लिए वो वरदानी समय, इतना वैल्यूबल समय है, वो पावर हमारे अंदर आती है बाबा से, और वो 8 बजे से पहले हिल नहीं सकते बिस्तर से, ऐसे ही होता है ना। तो हमको वो पावर मिली है ना, फिर हम सुबह सुबह रोज मुरली सुनते हैं, सुबह सुबह उठकर सेंटर जाते हैं, उनको लगता है ये सुबह सुबह कहाँ। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें नियम दिए वही हमें शक्ति देने वाले हैं इस कलयुगी दुनिया में हमें। इसीलिए बाबा एक जन्म में हमें 16 कला संपूर्ण बना देता है, सर्वगुण संपन्न बना देता है। जो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना समय लगा, कितना समय लगा? 1 सेकेंड। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000। तो हम ही तो हैं वो, हमको मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकेंड माना, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति, यानी बाबा हमें लिफ्ट देता है। सीढ़ी उतरना चढ़ना और एक लिफ्ट में चढ़ना, तो ये संगम युग पर हमें लिफ्ट मिलती है बाबा की पावर्स की, और उस लिफ्ट से हम चाहे आज हमारी जीरो कला हो गई थी, लेकिन हम फिर से वो 16 कला चढ़ जाते हैं। इसीलिए फिर कहा, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो इसीलिए अगर निश्चय है, तो बाबा ने कहा कोई भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, मानो कोई व्यर्थ हमारे लिए कहता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, यानी कोई हमें वो नाम मान शान नहीं देता है जो हम अपेक्षा करते हैं, या जो हम इच्छा रखते हैं वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। अंश मात्र भी वो व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर नहीं आएगा, तब हम कहेंगे कि हमारा वो निश्चय 100% है और हम विजयी हैं। तो ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही स्थितियां मन को हिलाने वाली होती हैं। तो बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है, समझ दी है, उसके आधार पर हम सदा ही निश्चय बुद्धि बनकर बाबा के विजयी बच्चे बनकर रहेंगे। ये हमें बाबा को क्या देना है, गिफ्ट देना है, क्योंकि बाबा कहता है मेरे गले का हार वही बनते हैं जो सदा माया को हरा देते हैं, और नहीं तो फिर माया से हार खाने वाले बन जाते। तो बाबा के गले का हार माना विजयी माला, विजयी माला में आने वाले हम बन सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय डबल डॉक्टर सविता दीदी जी ने निश्चय, निश्चित और निश्चिंत इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल बातें गृहस्थ जीवन में आती हुई परिस्थितियां और उसके साथ बाबा में जितना अडक निश्चय है, तो कैसे आप निश्चिंत सदा बाबा के बन करके रह सकते हो। बहुत सुंदर रीति से इस टॉपिक को इंसिडेंट सुना करके भी स्पष्ट किया, कहानियां सुना के भी जोरदार ताली बजा करके का आभार व्यक्त करेंगे।
क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ओ सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर